It's just a very simple problem. Part of my land is occupied. This part of my land, I want to be liberated by peaceful solution. Or if it is not liberated by peaceful solution, it is my right and duty to liberate it.
ये आवाज थी मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की, जो कह रहे थे कि अगर वो अपनी भूमि पर कब्जा किए हुए इलाके से इसराइल को शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हटा पाए तो उसको वहां से हटाने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है करेंगे। यूं तो इसराइल पर मिस्र और सीरिया ने 6 अक्टूबर 1973 को हमला किया, लेकिन एक सप्ताह पहले से ही इसराइली खुफिया एजेंसियां मिस्र के खेमे में हो रही सैनिक हलचल की खबर दे रही थी। 4 अक्टूबर को सोवियत संघ ने मिस्र से अपने सभी सैनिक सलाहकारों और उनके परिवार जनों को हटाना शुरू कर दिया था। फिर भी इसराइली मानने को तैयार नहीं थे कि हमला होने जा रहा है। अचानक मोसाद के लिए काम करने वाले अनवर सादात के नजदीकी साथी अशरफ मारवान का अपने हैंडलर दूबी के पास फोन आया कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैंने इसराइल फोन कर द एंजल द इजिप्शियन स्पाई हु सेव्ड इसराइल के लेखक यूरी बार जोसेफ से संपर्क किया, जो हाइफा विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं और इसराइली सेना में भी काम कर चुके हैं।
मारवान स्टडीड केमिस्ट्री, सो द कोड वर्ड्स फॉर वो were taken from chemistry and like phosphate or salt or whatever it is, and each code word had another meaning.
मारवान केमिस्ट्री का विद्यार्थी था, इसलिए युद्ध के लिए कोड वर्ड रखा गया था केमिकल। 4 अक्टूबर को उसने पेरिस से फोन किया कि वो दूबी से तुरंत मिलना चाहता है। जैसे ही दूबी लाइन पर आए, मारवान ने कहा वो बहुत सारे केमिकल्स के बारे में बात करना चाहता है, उसकी मोसाद के प्रमुख से लंदन में बैठक तय कराई जाए। यह खबर रात 12 बजे इसराइल पहुंची। मोसाद के प्रमुख मेजर जनरल जमीर ने सुबह की फ्लाइट से लंदन का रुख किया। दूबी और जमीर मारवान से मिलने पहुंचे। रात 11:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने अशरफ मारवान खड़े थे। वो अपने साथ कोई कागज नहीं लाए थे, लेकिन मिस्र की युद्ध योजना का एक एक बिंदु उनकी याददाश्त में दर्ज था। बैठक 2 घंटे चली। तड़के 3 बजे जमीर ने तेल अवीव फोन मिलाया। 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री गोल्डा मायर समेत इसराइल का पूरा नेतृत्व जाग चुका था। 9 बजे तक हमले का करारा जवाब देने के आदेश दिए गए और 10:00 बजते योम किपुर की छुट्टी पर गए इसराइली सैनिकों के घर पर फोन बजने लगे।
पहले चरण में मिस्र के 32,000 पैदल सैनिकों ने 720 नावों में स्वेज नहर पार की और बिना किसी विरोध के इसराइली इलाके में पहुंच गए। मैंने बार जोसेफ से पूछा कि इतनी जानकारी देने के बावजूद मारवान हमले का सही समय क्यों नहीं बता पाए। उन्होंने कहा हमला शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि हमला हुआ दोपहर 2 बजे।
He got the timing wrong because he left Egypt on Tuesday. The timing of the war was changed on Wednesday in a talk between Egypt's war minister who went to Syria to speak with President Assad, the father of Bashar Assad.
वो सही समय इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वो मंगलवार को मिस्र छोड़ चुके थे। हमले का दिन बुधवार को बदला गया, जब मिस्र के युद्ध मंत्री सीरिया के राष्ट्रपति असद से मिलने दमिश्क गए। सीरियाई सुबह 6 बजे लड़ाई शुरू करना चाहते थे, जबकि मिस्र शाम 6 बजे लड़ाई शुरू करने के पक्ष में था। समझौता हुआ कि हमला दोपहर 2 बजे शुरू होगा, इसलिए मारवान को इसकी भनक नहीं लग पाई।
दूसरी तरफ मिस्र के चोटी के सुरक्षा विशेषज्ञ अब्दुल मोनेम सैयद कहते हैं कि मारवान ने जानबूझकर इसराइलियों को गलत सूचना दी।
He was officially working for the president of Egypt, but also he was working for the security.
वो मिस्र के राष्ट्रपति के लिए काम कर रहे थे और साथ साथ मिस्र के सुरक्षा तंत्र के लिए भी। ये पहले से ही तय था कि वो इस तरह की खबर देकर इसराइलियों को भ्रमित करेंगे।
जब सैयद से कहा गया कि इसराइलियों का मानना है कि मारवान ने उन्हें ऐसी जानकारी दी जो पहले उन्हें किसी से भी नहीं मिली थी, तो सैयद का जवाब था।
How you build the confidence in one of the best intelligence services in the world?
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में इसी तरह की खबरें देकर विश्वास बनाया जाता है। आप उन्हें बेहतरीन सूचनाएं देते हैं जिससे आपका उद्देश्य पूरा होता है।
शायद जो भी कहें, लेकिन मोसाद के 1968 से 1974 तक यूरोप ऑपरेशन के प्रमुख शोमेल गोरेन ने एक बार जोसेफ को बताया था कि इस तरह के स्रोत से इस तरह का मसाला 1,000 साल में एक बार मिलता है। बार जोसेफ कहते हैं,
Well, if you compare Marwan to the greatest spies in the 20th century, spies like Richard Zogge, who spied for the Soviets on the German.
अगर आप मरवान की तुलना 20वीं सदी के बेहतरीन जासूसों जैसे किम फिल्बी और जगरेब से करें, जिन्होंने सोवियत संघ के लिए जासूसी की थी, किसी ने भी उनकी तरह दुश्मन की सामरिक स्थिति की इतनी साफ और सूक्ष्म तस्वीर नहीं पेश की। यहाँ तक कि मिस्र और सोवियत संघ के नेताओं के बीच हुई मुलाकात का एक एक शब्द उन्होंने इसराइलियों को बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि सादात ने ये कहा या वो कहा। उन्होंने बातचीत के मिनट्स के दस्तावेज मोसाद के सामने रख दिए। मेरे हिसाब से वो 20वीं सदी के सबसे बड़े जासूस थे।
इसराइल के एक और चोटी के खुफिया अधिकारी आहरोन लेवरोन का मानना है,
He was the best.
मरवान ने पहली बार 1970 में लंदन में मोसाद से संपर्क किया था। बार जोसेफ बताते हैं,
Well, we have to remember that Marwan wasn't just an Egyptian who sold his country's secrets to Israel. He was the son-in-law of President Nasser.
हमें ये याद रखना चाहिए कि मारवान मिस्र का सिर्फ एक शख्स ही नहीं था जिसने अपने देश की खुफिया जानकारी इसराइल को दी, बल्कि वो राष्ट्रपति नासिर का दामाद भी था। उसने उस जमाने में लंदन के चप्पे चप्पे में मौजूद लाल टेलीफोन बूथ से इसराइली दूतावास को फोन मिलाया था। उसने अपना कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं छोड़ा था, बल्कि ये कहा था कि वो दोबारा फोन करेगा जब दूतावास के अधिकारी ने मोसाद के जासूसों को बताया कि एक शख्स फोन कर उनके लिए जासूसी करने की पेशकश कर रहा है। तो उन्होंने उसका नाम पूछा। जब उसने बताया कि उसका नाम अशरफ मारवान है, तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने उसका नाम बहुत अच्छी तरह सुन रखा था। मोसाद और मारवान की पहली बैठक मध्य लंदन के एक होटल में हुई। निर्धारित समय पर मारवान हाथ में एक ब्रीफकेस लिए हुए लॉबी में दाखिल हुआ। उसके हैंडलर ने आगे बढ़कर मारवान से हाथ मिलाया और अरबी में कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मारवान साहब। मारवान समझा कि मिस्र की खुफिया एजेंसी ने उसके लिए जाल बिछा रखा है। उसने फौरन अंग्रेजी में पूछा, आर यू इसराइली? दूबी ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ मैं इसराइली हूँ। मारवान ने अपने ब्रीफकेस से हस्तलिखित अरबी के दस्तावेज निकाले और उन्हें जोर जोर से पढ़ने लगा। दूबी को सैनिक दस्तावेजों का अंदाजा था। मारवान उनके सामने मिस्र की सेना का अत्यंत गोपनीय ऑर्डर ऑफ बैटल पढ़ रहा था।
दिलचस्प बात यह थी कि इसराइल के जासूसों से मिलते समय मारवान बहुत अधिक सावधानी नहीं बरतते थे।
We don't have explanations for this type of behavior. But he was very self-assured. He was certain that in his position as a son-in-law.
इस तरह के व्यवहार को किसी भी तरह समझाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको अपने आप पर बहुत विश्वास था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। वो दूबी से मिलने मिस्र दूतावास की कार में आया। कार को मिस्री दूतावास का ड्राइवर चला रहा था। एक दूसरे मौके पर दूबी और मोसाद के एक और अफसर मायर मारवान के लंदन मेफेयर के उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने गए। पूरे समय वो लिविंग रूम में बैठकर बातें करते रहे, जबकि बगल के शयन कक्ष में एक सेक्स वर्कर मारवान का इंतजार कर रही थी। वो लिविंग रूम में होने वाली एक एक बात सुन सकती थी, लेकिन मारवान को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मोसाद ने एक बार वायरलेस गैजेट की ट्रेनिंग के लिए एक विशेषज्ञ मारवान के पास भेजा, लेकिन मारवान कभी कोई गैजेट चलाना नहीं सीख सका। इसराइल के इतिहास के सबसे बड़े जासूस ने मोसाद के लिए काम करते हुए कोई भी जानकारी कभी भी वायरलेस से नहीं दी। मोसाद में उसके हैंडलर मारवान के बारे में मजाक करते थे। वो कहते थे, उसके दो दो बाएं हाथ हैं।
सवाल उठता है कि मारवान के पास ऐसे क्या कारण थे कि उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करने का फैसला किया।
The Mossad believes that it was a combination of money and his desire to become a very important man to influence history.
मोसाद का मानना है कि पैसा और इतिहास में एक खास मुकाम हासिल करने की उसकी चाहत ने उससे ऐसा करवाया। कुछ लोगों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, चाहे वो शारीरिक जोखिम हो या भावनात्मक। यही वजह है कि कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग जैसे शौक चुनते हैं। लेकिन मारवान को खेलों का कोई शौक नहीं था। इसके बदले उसे जुए, अनैतिक व्यापार, सौदों और इसराइल के साथ संबंधों में अनावश्यक जोखिम उठाने में अपूर्व संतुष्टि मिलती थी। ये समझना गलत नहीं होगा कि उसके बढ़े हुए अहम, नासिर के साथ कुंठित संबंध और विश्वासघात, इन सब से मारवान को एक खास किस्म का किक मिलता था।
2007 में अशरफ मारवान की लंदन में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वो लंदन स्थित अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़े। स्कॉटलैंड यार्ड ने उसकी जांच की, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बाद में मरवान के बेटे कमाल मरवान ने कहा,
मैं निश्चित नहीं हूं कि हुआ क्या था, लेकिन इस बारे में मैं निश्चित हूं कि उनकी हत्या हुई थी 100%।
उनका कहना था कि उनके पिता इतने कमजोर थे कि वो रेलिंग के ऊपर चढ़कर नीचे नहीं कूद सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल के पास 2 काली चमड़ी के लोगों को मंडराते हुए देखा था। बार जोसेफ बताते हैं,
स्कॉटलैंड यार्ड दैट इन्वेस्टिगेटेड दिस केस एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज कंक्लूडेड दैट इट वाजंट अ सुसाइड एंड इट वाजंट एन एक्सीडेंट।
स्कॉटलैंड यार्ड ने इस पूरे मामले की जांच की थी और वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये आत्महत्या का मामला नहीं था और न ही दुर्घटना थी। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हत्या की गई थी। वो मेफेयर में अपने फ्लैट की रेलिंग पर चढ़कर नीचे कूद गए थे। किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन हमारा मानना है कि उस दिन मारवान की बालकनी के बगल वाले शयन कक्ष में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने उन्हें ऐसा विकल्प दिया जिसे वो नामंजूर नहीं कर पाए। संभवतः उन्होंने उनसे कहा कि हमारे धक्का देने से बेहतर है कि तुम ही अपने आप को मार लो। मेरा मानना है कि मिस्र की खुफिया एजेंसियों ने ये काम अंजाम दिया था, क्योंकि उनका अतीत मुबारक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब था।
उनकी मौत के बाद अशरफ मरवान के शव को मिस्र ले जाया गया। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक के बेटे और मिस्र की खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। राष्ट्रपति मुबारक ने भी वक्तव्य जारी कर कहा कि मरवान देशभक्त थे और अपने देश के लिए वफादार थे। मैंने यूरी बार जोसेफ से पूछा कि मरवान अगर गद्दार थे तो उनकी इतने सम्मान के साथ अंत्येष्टि कैसे हुई?
दिस इज द वे टू डू इट बिकॉज एज आई सेड मरवान वाज वन ऑफ देम। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ प्रेसिडेंट नासर। ही वाज अ वेरी क्लोज एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ प्रेसिडेंट सादात।
इस तरह की चीजें इसी तरह की जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो मिस्र के राष्ट्रपति नासिर का दामाद था। वो राष्ट्रपति सादात का भी बहुत नजदीकी सलाहकार था। किम फिल्बी के मामले में भी ब्रिटिश चाहते थे कि वो सोवियत संघ वापस चला जाए, बजाय इसके कि उस पर ब्रिटेन में मुकदमा चले। उसी तरह मिस्र वाले भी चाहते थे कि मरवान की मौत लंदन में हो, बजाय इसके कि उस पर मिस्र में मुकदमा चले और पूरी सरकार शर्मसार हो। इसलिए बेहतर तरीका था कि उनसे लंदन में पिंड छुड़ाया जाए और उनकी राजकीय अंत्येष्टि का ढोंग रचाया जाए।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।